एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही दिलचस्प और यकीनन कुछ हद तक विवादास्पद अमेरिकी दार्शनिक रिचर्ड मैके रॉटी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं।
नमस्कार। हाँ, रॉटी एक ऐसा नाम है जिन्होंने दर्शन शास्त्र की जो पारंपरिक बुनियादें थीं उनको काफी हद तक हिला के रख दिया।
बिल्कुल, और कोशिश की कि दर्शन को संस्कृति और राजनीति के जो बड़े सवाल हैं उनसे जोड़ा जाए।
सही कहा।
जो लोग मतलब विचारों की दुनिया को जल्दी लेकिन गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए रॉटी को समझना मुझे लगता है आधुनिक सोच के कई अहम मोड़ों को समझने जैसा हो सकता है।
हाँ, और रॉटी की एक खास बात थी, वो दर्शन की दुनिया के क्या कहते हैं अंदरूनी दांव पेच भी खूब समझते थे, और साथ ही उसके शायद सबसे तीखे आलोचकों में से भी एक थे।
अच्छा,
उनका मकसद था दर्शन को किताबों और सेमिनारों से बाहर निकालकर दोबारा जिंदगी से जोड़ना, उसे प्रासंगिक बनाना।
तो आज की हमारी जो बातचीत है वो रॉटी पर लिखे गए कुछ लेखों और विश्लेषणों पर आधारित है,
जी
और हमारा इरादा है रॉटी की उस चुनौती को समझना जो उन्होंने सत्य और ज्ञान की हमारी सदियों पुरानी धारणाओं को दी, और ये देखना कि उनके विचार आज भी क्यों गूंजते हैं, क्यों मायने रखते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं उस माहौल से, उस दौर से जिसमें रॉटी के विचार पनपे।
हाँ, ये 20वीं सदी का मध्य और उत्तरार्ध था, एक ऐसा टाइम जब लॉजिकल पॉजिटिविज्म जैसी जो विचारधाराएं थी वो दम तोड़ रही थी
हाँ, उनका असर कम हो रहा था।
और विश्लेषणात्मक दर्शन का बोलबाला बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही पारंपरिक दार्शनिक सच्चाइयों पर सवाल भी उठ रहे थे, गहरे हो रहे थे।
बिल्कुल, और माहौल भी ऐसा था। शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष जोरों पर था, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तराधुनिकतावाद जैसी बौद्धिक लहरें भी थीं। ये सब उनके सोचने के ढंग को शेप दे रही थी।
हाँ, और उस समय बौद्धिक दुनिया जैसे दो खेमों में बटी हुई थी, है ना?
हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं, एक तरफ एंग्लो अमेरिकन परंपरा थी, इंग्लैंड और अमेरिका वाली, तो तर्क और विश्लेषण पर बहुत जोर देती थी।
लॉजिक पर?
हाँ, लॉजिक पर। और दूसरी तरफ थी यूरोप की महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल परंपरा, जो इतिहास और व्याख्या पर ज्यादा ध्यान देती थी। रॉटी का काम इन दोनों खेमों को जो समस्याएं जन्म दे रही थीं, उन समस्याओं को ही एक तरह से बेमानी साबित करने का प्रयास था।
अच्छा, मतलब जड़ पर ही वार।
कुछ वैसा ही। उन पर जॉन ड्यूई के व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म का असर था, फिर लुडविग विटगेंस्टाइन के जो भाषा पर बाद के विचार थे उनका, और मार्टिन हाइडेगर की जो तत्व मीमांसा की आलोचना थी उसका भी गहरा प्रभाव था।
और वो अपने समय के दूसरे बड़े विचारकों से भी लगातार बातचीत में थे।
हाँ बिल्कुल, जैसे जॉन रॉल्स जो राजनीतिक दर्शन में बहुत बड़ा नाम है, थॉमस कोन विज्ञान के दर्शन में, या फिर वो जिन्हें उत्तर संरचनावादी कहते हैं जैसे जैक्स डेरिडा और मिशेल फूको, इनके साथ उनका लगातार संवाद चलता रहता था, भले ही हमेशा सहमति न हो।
उनके निजी जीवन की बात करें तो जन्म 1931 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था,
जी,
और उनके माता पिता जेम्स और विनिफ्रेड दोनों लेखक थे और राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय।
स्टालिनवाद के विरोधी थे।
हाँ, प्रगतिशील थे, तो कह सकते हैं कि रॉटी का बचपन ही बौद्धिक और राजनीतिक बहसों के बीच गुजरा।
माहौल ही वैसा था घर में।
और वो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। सुना है सिर्फ 15 साल की उम्र में शिकागो यूनिवर्सिटी चले गए थे।
हाँ, ये कमाल की बात है, सिर्फ 15 साल की उम्र में। वहां उन्होंने वो मशहूर ग्रेट बुक्स वाला कोर्स पढ़ा।
अच्छा,
और उसी दौर में वो एक ऐसी दार्शनिक खोज में थे, एक ऐसी फिलॉसफी ढूंढ रहे थे जो उनकी जो सत्य की निजी प्यास थी और जो सामाजिक न्याय के लिए उनकी सार्वजनिक चिंता थी, इन दोनों को एक साथ ला सकें।
ये एक दिलचस्प द्वंद्व है।
बिल्कुल। बाद में उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से 1956 में दर्शन शास्त्र में पीएचडी की, और अपने लंबे अकेडमिक करियर में वे वेलेस्ली कॉलेज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी और आखिर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी जगहों पर रहे।
प्रिंसटन वाला समय शायद खास अहम था।
हाँ, प्रिंसटन में वो 1961 से 1982 तक रहे, और वहीं उनका झुकाव जो है वो पारंपरिक विश्लेषणात्मक दर्शन से हटकर व्यवहारवाद यानी प्रैग्मेटिज्म की ओर ज्यादा हुआ।
चलिए, अब रॉटी के जो मुख्य विचार हैं उनकी परतें खोलते हैं।
सबसे पहले आता है नव व्यवहारवाद या न्यू प्रैग्मेटिज्म।
हाँ, नियोक्रैग्मैटिज्म। उन्होंने जो अमेरिकी व्यवहारवाद की पुरानी धारा थी, ड्यूई वगैरह की, उसको एक नया रूप दिया, उसे रिवाइव किया।
कैसे?
उनका मुख्य तर्क क्या था?
उनका तर्क ये था कि हमें अपने विश्वासों को, हमारे जो बिलीव्स हैं, उनको इस आधार पर नहीं आंकना चाहिए कि वो बाहरी सच्चाई से कितना मेल खाते हैं,
अच्छा,
बल्कि इस आधार पर कि उनके व्यवहारिक नतीजे क्या होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सवाल ये नहीं कि क्या ये सच है,
बल्कि
ये कि क्या यह सोचने या कहने का एक उपयोगी, एक यूजफुल तरीका है। फोकस उपयोगिता पर था।
दिलचस्प। और इसी से जुड़ा है उनका आधार विरोध यानी एंटी फाउंडेशनलिज्म का विचार।
हाँ बिल्कुल, एंटी फाउंडेशनलिज्म। रॉडी ने इस सदियों पुरानी धारणा को खारिज कर दिया कि ज्ञान के लिए कोई एकदम पक्की, अटल, संदेह से परे नींव, कोई फाउंडेशन जरूरी है,
जैसे गणित में होता है स्वयं सिद्ध।
हाँ, जैसे गणित में होता है। उनका मानना था कि हमारे विश्वास अकेले खड़े नहीं होते, वो हमारे बाकी विश्वासों के एक पूरे जाल, एक वेब के भीतर ही मायने रखते हैं और सही ठहराए जाते हैं।
इसे होलिज्म भी कहते हैं शायद।
हाँ, होलिज्म या समग्रतावाद, मतलब किसी एक विश्वास का अर्थ या वो सही है या नहीं, ये अकेले नहीं देखा जा सकता, उसे हमारे बाकी सारे विश्वासों के पूरे ताने बाने के संदर्भ में ही समझना होगा।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दर्शन का जो सदियों पुराना लक्ष्य रहा है, परम सत्य खोजना, वो शायद एक गलत दिशा में जाना था।
राडी के हिसाब से तो बिल्कुल, वो मानते थे कि ये खोज ही शायद एक भ्रामक खोज थी।
और वो प्रतिनिधित्ववाद, रिप्रेजेंटेशनलिज्म के भी बड़े आलोचक थे। ये क्या है
रिप्रेजेंटेशनलिज्म? ये पारंपरिक सोच है कि हमारी भाषा और हमारे विचार बाहरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कोई आईना अक्स दिखाता है।
अच्छा, कि हमारे दिमाग में दुनिया की एक तस्वीर बनती है।
हाँ, लगभग वैसा ही। राडी ने कहा कि भाषा और विचार दुनिया का आईना नहीं है।
तो फिर क्या है?
वो दुनिया में जीने और अपने काम निकालने के औजार हैं, टूल्स हैं। ये विचार उन्होंने काफी हद तक विटकिंस्टाइन से लिया था।
औजार जैसे हथौड़ा या पेचकस?
हाँ, उसी तरह जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार चाहिए होते हैं, वैसे ही अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग शब्दावलियां या वोकैबुलरीज, मतलब अलग अलग तरह की भाषाएं उपयोगी होती हैं।
तो दार्शनिक प्रगति क्या है फिर?
उनके अनुसार दार्शनिक प्रगति दुनिया की असली तस्वीर खोजने में नहीं है, बल्कि बेहतर, ज्यादा उपयोगी वैचारिक औजार गढ़ने में है, नई शब्दावलियां बनाने में है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। भाषा सिर्फ आईना नहीं, एक औजार है।
जी।
और फिर आता है उनका एक और मशहूर और शायद थोड़ा विवादास्पद विचार, पब्लिक प्राइवेट स्प्लिट। ये क्या है?
हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट स्प्लिट वाला आइडिया रॉटी में हमारे जीवन के दो हिस्सों में एक तरह की, कह लीजिए, लक्ष्मण रेखा खींचने की बात की।
दो हिस्से कौन कौन से?
एक है हमारा निजी दायरा, प्राइवेट स्फीयर, जहां हम आत्मनिर्माण करते हैं, मतलब खुद को बनाते हैं, अपनी व्यक्तिगत पूर्णता की तलाश करते हैं या अपनी विडंबना, आयरोनी से खेलते हैं, अपना निजी दर्शन बनाते हैं।
और दूसरा?
दूसरा है सार्वजनिक दायरा, पब्लिक स्फीयर, यानी राजनीति और समाज का क्षेत्र, जहां राडी के अनुसार हमारा मुख्य और शायद एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए दूसरों की पीड़ा को कम करना, क्रूरता को रोकना।
अच्छा, मतलब सार्वजनिक जीवन में फोकस सिर्फ पीड़ा कम करने पर।
हाँ, उनके मुताबिक यही उदारवादी राजनीति का आधार होना चाहिए। इस नजरिए से देखें तो दर्शन का काम बड़ी बड़ी सैद्धांतिक समस्याओं को हल करना नहीं रह जाता।
तो फिर क्या रह जाता है?
उसका काम एक तरह से चिकित्सीय, थेराप्यूटिक हो जाता है। हमें उन वैचारिक गांठों से मुक्त करना जो हमें पीड़ा देती हैं, या हमें दूसरों की पीड़ा समझने से रोकती हैं। वो दर्शन को ज्यादा मानवीय और कम तकनीकी बनाना चाहते थे।
लेकिन ये जो विभाजन है निजी और सार्वजनिक के बीच, क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? क्या हमारे निजी विश्वास हमारे सार्वजनिक कामों पर असर नहीं डालते?
ये बहुत अहम सवाल है, और रॉटी के इस विचार की इसी बिना पर काफी आलोचना भी हुई है। आलोचक कहते हैं कि ये विभाजन बहुत आर्टिफिशियल है, बनावटी है, और कई बार खतरनाक भी हो सकता है।
तो रॉटी का जवाब क्या था इस पर?
उनका जवाब था कि हाँ, असर डालते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में हमें एक साझा जमीन तलाशनी होती है, और वो साझा जमीन दूसरों की पीड़ा कम करने पर आधारित होनी चाहिए, भले ही हमारे निजी विश्वास एकदम अलग क्यों ना हो। पर हाँ, ये बहस आज भी जारी है।
अब उनकी कुछ प्रमुख किताबों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो फिलॉसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, 1979। इसने तो जैसे एक धमाका ही कर दिया था दर्शन की दुनिया में।
बिल्कुल, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे क्रांतिकारी किताब मानी जाती है। इसी में उन्होंने उस रूपक, उस मेटाफर की धज्जियां उड़ाई जिसके सहारे पश्चिमी दर्शन सदियों से चला आ रहा था।
कौन सा रूपक?
वो मन को आईना समझने वाला रूपक, कि हमारा मन एक आईना है जिसका काम बाहरी दुनिया को सही सही रिफ्लेक्ट करना है, प्रतिबिंबित करना है। रॉटी ने तर्क दिया कि इसी आईने वाले रूपक ने ही सत्य और ज्ञान को लेकर ऐसी पहेलियां खड़ी कर दी हैं जिनका कोई हल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि दर्शन को अब सत्य के पहरेदार की भूमिका छोड़ देनी चाहिए।
और कौन सी भूमिका अपनानी चाहिए?
एक ज्यादा विनम्र, संवादात्मक, डायलॉजिकल और चिकित्सीय भूमिका, थेरेप्यूटिक रोल। इसी किताब ने उन्हें एनालिटिक फिलॉसफी की जो मुख्य धारा थी उससे एक तरह से अलग खड़ा कर दिया।
इसके बाद आई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मेटिज्म 1982, ये निबंधों का संग्रह था।
हाँ, इसमें कई एसेज थे और इसमें उन्होंने अपने उत्तर दार्शनिक या पोस्ट फिलोसॉफिकल समाज के विचार को और फैलाया। यहां वे और ज्यादा जोर देकर कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें खोजना है।
तो सत्य क्या है फिर?
सत्य उन विश्वासों के लिए हमारी प्रशंसा या सहमति है जो हमें दुनिया में सफलतापूर्वक जीने और अपने लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। सत्य कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे व्यवहार की सफलता से जुड़ा है।
फिर 1989 में आई कंटिंजेंसी, आयरनी एंड सॉलिडैरिटी। कहा जाता है ये उनकी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है।
हाँ, शायद इसलिए क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा सुलभ है, पढ़ने में आसान है और सीधे जीवन जीने के तरीके पर बात करती हैं। इसमें वे बताते हैं कि हम बिना किसी परम सत्य या किसी मेटाफिजिकल आधार के भी कैसे एक सार्थक जीवन जी सकते हैं।
और इसी में वो उदार विडंबनावादी, लिबरल आयरनिस्ट का विचार लाते हैं।
एग्जैक्टली, लिबरल आयरनिस्ट, ये एक आदर्श नागरिक की तस्वीर है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये समझता है कि उसके सबसे गहरे विश्वास भी, जो उसकी कोर वैल्यूज हैं, वो भी ऐतिहासिक रूप से आकस्मिक हैं, कंटिंजेंट हैं।
आकस्मिक मतलब?
मतलब वो कोई शाश्वत सत्य नहीं है, वो समय और संयोग की देन है, इतिहास ने उन्हें बनाया है।
लेकिन
इस विडंबनापूर्ण समझ के बावजूद वो व्यक्ति क्रूरता कम करने और मानवीय एकजुटता यानी सॉलिडैरिटी बढ़ाने के जो उदारवादी लक्ष्य हैं उनके प्रति पूरी तरह कमिटेड रहता है, प्रतिबद्ध रहता है।
सिर्फ आकस्मिक है, परमानेंट नहीं है, तो वो उनके लिए मजबूती से खड़ा कैसे रह सकता है? क्या ये विडंबना, ये आयरनी प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं करती?
राड़ी के आलोचक ठीक यही सवाल उठाते हैं, बहुत वैलिड सवाल है ये। राड़ी का जवाब था कि प्रतिबद्धता के लिए किसी परम सत्य के दावे की जरूरत नहीं है।
तो फिर प्रतिबद्धता कहाँ से आएगी?
हम अपने मूल्यों से इसलिए जुड़े रह सकते हैं क्योंकि वे हमारे हैं, हमारी साझा कहानी का, हमारी उम्मीदों का हिस्सा है, और क्योंकि हम मानते हैं कि वे एक बेहतर, एक कम क्रूर दुनिया बनाने में मदद करते हैं। प्रतिबद्धता एकजुटता से आती है, किसी मेटाफिजिकल गारंटी से नहीं।
और आखिर में अचीविंग अ कंट्री 1998 का जिक्र भी जरूरी है। ये किताब तो काफी राजनीतिक थी।
हाँ, ये एक तरह का जोशीला राजनीतिक पर्चा था, एक मैनिफेस्टो जैसा। इसमें उन्होंने अमेरिकी अकादमिक जगत के जो वामपंथी थे उनकी कड़ी आलोचना की।
किस बात पर?
कि वो जमीनी सुधारवादी राजनीति से कट गए हैं और सिर्फ अमूर्त सिद्धांतों और कल्चरल पॉलिटिक्स यानी सांस्कृतिक बहसों में उलझ कर रह गए।
अच्छा।
उन्होंने जॉन ड्यूई और वॉल्ट विटमैन जैसे जो पुराने अमेरिकी विचारक थे उनकी देशभक्तिपूर प्रगतिशील भावना को फिर से जगाने का आह्वान किया
और ये किताब बाद में फिर चर्चा में आई।
हाँ, दिलचस्प बात यह है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद इस किताब पर फिर से सबका ध्यान गया, क्योंकि इसमें उन्होंने जिस तरह के सामाजिक और राजनीतिक विभाजन की चेतावनी दी थी वो काफी लोगों को सच होती हुई सी लगी।
इन रचनाओं में जो विचार विकसित हुए उन्होंने उन्हें अपने समकालीनों के बीच एक खास और, जैसा हमने कहा, विवादास्पद जगह दी। अगर हम राड़ी की तुलना दूसरे बड़े दार्शनिकों से करें तो क्या तस्वीर उभरती है?
जहां कांट जैसे दार्शनिक एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश करते थे या हाइडेगर जैसे दार्शनिक सत्ता के मूल प्रश्नों में गहरे उतरते थे, राड़ी का जोर समस्याओं को हमेशा के लिए हल करने के बजाय उन्हें निरस्त करने, डिसॉल्व करने या उनसे पीछा छुड़ाने पर ज्यादा था।
पीछा छुड़ाने पर?
हाँ, मतलब ये दिखाने पर कि ये समस्याएं शायद भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा हुई हैं, असली समस्याएं हैं ही नहीं। वो जॉन ड्यूई के लोकतांत्रिक आशावाद और व्यवहारवाद से तो प्रभावित थे, लेकिन उसमें उन्होंने विटकिंस्टाइन का भाषा और दर्शन को एक चिकित्सा या थेरेपी मानने वाला दृष्टिकोण भी जोड़ दिया।
तो वो प्लेटो या कांट की तरह ज्ञान और नैतिकता के लिए कोई यूनिवर्सल फाउंडेशन, कोई सार्वभौमिक नींव नहीं तलाश रहे थे?
बिल्कुल नहीं। इस मामले में वो नीट्शे और ड्यूई के ज्यादा करीब खड़े दिखते हैं। वो मानते थे कि हमारे विचार और मूल्य शाश्वत नहीं बल्कि ऐतिहासिक आविष्कार हैं, हिस्टोरिकल इन्वेंशंस हैं।
हालांकि फूको और डेरिडा जैसे विचारक भी तो सत्य के दावों पर सवाल उठा रहे थे, रॉडी उनसे कैसे अलग थे?
हाँ, वो भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन रॉडी उनसे इस बात में अलग थे कि वे अमेरिकी उदार लोकतंत्र की जो भाषा थी, जो उसके संस्थान थे, उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता कभी नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा एक लिबरल डेमोक्रेट बने रहे।
अच्छा।
उन्होंने यूर्गेन हेबरमास, डोनाल्ड डेविडसन, डेरिडा, चार्ल्स टेलर जैसे कई समकालीनों के साथ लगातार बहसें की। कभी सहमति बनी, कभी गहरे मतभेद रहे। ये बौद्धिक आदान प्रदान काफी सघन था।
और उनकी विरासत, लेगेसी, जाहिर है वो एक ध्रुवीकरण करने वाले विचारक रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं।
यकीनन, मानविकी के कई क्षेत्रों में, जैसे लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज वगैरह में, लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने दर्शन को अकादमिक घेरों से बाहर निकालकर संस्कृति और राजनीति से जोड़ा।
लेकिन दर्शन शास्त्र के विभागों के अंदर,
वहां तो जैसे राडी वॉर्स ही छिड़ गए थे। कई पारंपरिक दार्शनिकों ने उन पर सत्य और तर्क की अवधारणा को ही नष्ट करने का आरोप लगाया। कहा कि उनका रास्ता खतरनाक रंग से सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म और अतार्किकता, इर्रैशनलिज्म की ओर ले जाता है।
तो कुल मिलाकर उनका असर क्या रहा, क्या कहेंगे आप?
मेरे विचार में उनका सबसे बड़ा असर ये रहा कि उन्होंने एनालिटिक और कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के बीच की जो खाई थी, उसे पाटने में मदद की, या कम से कम उस विभाजन को कम प्रासंगिक बना दिया।
और उनकी वो उदार विडंबनावादी की अवधारणा?
हाँ, वो राजनीतिक सिद्धांत में आज भी एक अहम रेफरेंस पॉइंट है, और आज का जो पोस्ट ट्रूथ वाला दौर कहा जाता है,
हाँ,
उसमें सत्य, ऑब्जेक्टिविटी और समाज में एक्सपर्ट्स की भूमिका पर जो बहसें चल रही हैं, उनमें राडी के विचार कहीं ना कहीं जरूर गूंजते हैं। उनकी आधारवाद की आलोचना आज भी प्रासंगिक लगती है।
और उनकी वो किताब अचीविंग अ कंट्री?
हाँ, उसमें वामपंथ की उनकी आलोचना भी आज तक बहस का विषय बनी हुई है।
यानी राडी को समझना आज की कई बौद्धिक और राजनीतिक बहसों को समझने के लिए जरूरी है।
निश्चित रूप से, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई हम अपने विश्वासों को सही कैसे ठहराते हैं, ज्ञान का आधार क्या है, और एक ऐसे समाज में जहां कोई एक परम सत्य न हो, हम मिलकर कैसे रह सकते हैं और कैसे प्रगति कर सकते हैं। ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन शायद उनके विचारों को और साफ कर सकें। पहला, सत्य वह है जिसे आपके समकालीन आपको कहने देते हैं। Truth is what your contemporaries let you get away with saying. ये सुनने में तो काफी विवादास्पद लगता है।
हाँ, है। ये उनकी किताब Philosophy and the Mirror of Nature से है, और इसे अक्सर गलत समझा जाता है। राडी का मतलब ये नहीं था कि सत्य बस एक ओपिनियन है जिसे बहुमत मान ले।
तो फिर क्या मतलब था?
बल्कि वे कह रहे थे कि किसी बात को सही ठहराने की जो प्रक्रिया है, जस्टिफिकेशन, वो एक सामाजिक और भाषाई गतिविधि है। हम अपने विश्वासों को किसी बाहरी अमानवीय वास्तविकता के सामने सही नहीं ठहराते।
किसके सामने ठहराते हैं?
अपने साथी मनुष्यों के सामने, अपनी भाषा और तर्कों के जरिए। ये ज्ञान पर सामाजिक निर्माण पर जोर देता है कि सच क्या है, ये समाज में तय होता है, बातचीत से तय होता है।
अच्छा, दूसरा कथन, स्वतंत्रता का ध्यान रखें और सत्य अपना ध्यान खुद रख लेगा।
टेक केयर ऑफ फ्रीडम एंड ट्रूथ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ।
ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मेटिज्म से है और उनके राजनीतिक दर्शन का सार है एक तरह से। उनका तर्क था कि अगर हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां विचारों का खुला और स्वतंत्र आदान प्रदान हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो जो सबसे उपयोगी और भरोसेमंद विश्वास है, वह स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आएंगे।
मतलब हमें सत्य की चिंता करने की जरूरत नहीं,
हमें सत्य के किसी खास दार्शनिक सिद्धांत की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमें बताए कि क्या सही है। प्राथमिकता संवाद और स्वतंत्रता को देनी है, सत्य उसका नतीजा होगा, बाई प्रोडक्ट होगा।
तीसरा, दुनिया नहीं बोलती, केवल हम बोलते हैं।
द वर्ल्ड डज नॉट स्पीक, ओनली वी डू।
ये कंटिंजेंसी, आयरनी और सोलिडारिटी से और उनके एंटी रिप्रेजेंटेशनलिस्ट नजरिए को दिखाता है। मतलब भौतिक दुनिया तो है, वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो खुद हमें ये नहीं बताती कि उसे कैसे समझना है या उसके बारे में क्या कहना है।
वो चुप रहती है।
हाँ, वो किसी निर्देश पुस्तिका के साथ नहीं आती। ये हम इंसान हैं जो भाषा के जरिए दुनिया का वर्णन करते हैं, उसे अर्थ देते हैं। भाषा दुनिया का आईना नहीं, बल्कि उसे समझने और उसमें काम करने का औजार है, हमारी बनाई हुई चीज है।
और चौथा, हमें तर्क और भावना, विचार और अनुभूति के बीच पारंपरिक दार्शनिक भेद से परे जाने की आवश्यकता है। We need to get beyond the traditional philosophical distinction between reason and emotion, thought and feeling.
ये दिखाता है कि रॉटी इंसान को टुकड़ों में नहीं देखते थे। वो मानते थे कि तर्क और भावना, विचार और अनुभव, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं।
जबकि पारंपरिक दर्शन ने तो अक्सर तर्क को ऊपर रखा है।
हाँ बिल्कुल, पारंपरिक दर्शन ने अक्सर रीजन को इमोशन से ऊपर रखा है, उसे ज्यादा भरोसेमंद माना है। लेकिन रॉडी इस विभाजन पर ही सवाल उठाते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने विश्वासों और फैसलों को सिर्फ तार्किक आधारों तक ही क्यों सीमित रखें, जबकि भावनाएं और अनुभूतियां भी हमारे जीवन का उतना ही अहम हिस्सा हैं।
जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, राडी की आलोचना भी खूब हुई। सबसे आम आरोप तो सापेक्षवाद का ही था, रिलेटिविज्म का,
कि उनका दर्शन हमें एक ऐसी ढलान पर ले जाता है जहां हर विचार हर विश्वास बराबर लगने लगता है और हम सही गलत अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाते, फिर तो सब कुछ जायज हो जाएगा।
और उन पर आत्मखंडन का आरोप भी लगा, सेल्फ रेफ्यूटेशन।
हाँ, ये भी एक बड़ी आलोचना थी। थॉमस नेगल और जॉन सर्ल जैसे दार्शनिकों ने कहा कि भाई रॉडी खुद तो बड़े जोर शोर से अपने सत्य का दावा कर रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, जबकि वे वस्तुनिष्ठ सत्य की संभावना को ही नकार रहे हैं।
तो ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ।
हाँ, आलोचकों का यही कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ही नहीं तो हमें राडी की बात क्यों माननी चाहिए, उनका दावा कैसे सही हो सकता है।
और राजनीतिक स्तर पर भी दोनों तरफ से आलोचना हुई, रूढ़िवादियों से भी और वामपंथियों से भी।
बिल्कुल, रूढ़िवादियों ने उन्हें परंपरा का दुश्मन माना क्योंकि वो हर चीज को कंटिंजेंट कह रहे थे, तो कई वामपंथियों ने उन्हें पर्याप्त रूप से क्रांतिकारी नहीं माना। उन्हें लगा कि वो सिर्फ उदारवादी व्यवस्था, बुर्जुआ लिबरलिज्म को ही बचाना चाहते हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहते।
और यूरोपीय विचारकों ने भी आलोचना की।
हाँ, जैसे यूर्गन हैबरमास, उन्होंने कहा कि राडी का नजरिया बहुत ज्यादा स्वजाति केंद्रित है, एथनोसेंट्रिक है, यानी वो सिर्फ पश्चिमी उदारवादी मूल्यों के दायरे में ही सोचता है और दूसरी संस्कृतियों या अपने ही समाज की गहरी नाइंसाफियों की आलोचना करने के लिए कोई सार्वभौमिक नैतिक आधार नहीं देता।
राडी ने इन आलोचनाओं का जवाब कैसे दिया, खासकर ये एथनोसेंट्रिज्म वाले आरोप का?
तो उन्होंने इस आरोप को एक तरह से स्वीकार किया, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब कहीं ना कहीं से तो शुरू करते ही हैं और हमारे लिए शुरुआत का बिंदु हमारा अपना समुदाय, अपनी भाषा और अपने मूल्य ही हो सकते हैं। हम हवा में खड़े होकर तो सोच नहीं सकते।
तो फिर मूल्यों को प्राथमिकता कैसे दें?
उन्होंने तर्क दिया कि हमें अपने उदारवादी मूल्यों को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि वे एकजुटता बढ़ाते हैं और क्रूरता कम करते हैं। ये व्यवहारिक कारण है, न कि इसलिए कि वे ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित कोई सही मूल्य हैं। वो किसी बाहरी सार्वभौमिक दृष्टिकोण की संभावना में यकीन ही नहीं करते थे।
रॉडी के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं। हमने सुना है कि उनके बचपन का एक किस्सा लियोन ट्रॉट्स्की से जुड़ा है।
हाँ, ये सच है। उनके माता पिता उस समिति में शामिल थे जो स्टालिन द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ मेक्सिको में निर्वासित लियोन ट्रॉट्स्की का बचाव करी थी।
अच्छा,
राडी को याद था कि बचपन में उनके घर पर कभी कभी ट्रॉट्स्की के समर्थक बुद्धिजीवियों की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक भी तैनात रहते थे, तो ये उनके शुरुआती जीवन में राजनीतिक सक्रियता के माहौल को दिखाता है।
और एक और किस्सा है जंगली ऑर्किड्स और सामाजिक न्याय के बारे में, वो क्या है?
हाँ, ये भी वे अक्सर सुनाते थे। अपनी जवानी में वे दो बिल्कुल अलग अलग जुनूनों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते थे। एक तरफ जंगली ऑर्किड फूलों की निजी एकांत सौंदर्य की खोज और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिए सार्वजनिक नैतिक संघर्ष की मांग। ये जो निजी सुंदरता और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच का तनाव था, ये शायद उनके बाद के दर्शन में जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच उन्होंने विभाजन किया, उसका बीज बना। ये दिखाता है कि उनके दार्शनिक विचारों की जड़ें उनके गहरे व्यक्तिगत अनुभवों में भी थीं।
और ये भी कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र की इतनी आलोचना करने के बावजूद वे एक बहुत समर्पित शिक्षक थे।
ये बिल्कुल सच है। वे अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और उनकी एक कमाल की क्षमता थी कि वो बहुत जटिल दार्शनिक विचारों को, यहाँ तक कि जिनके वे खुद विरोधी थे, बहुत साफ और निष्पक्ष तरीके से समझा सकते थे।
और जीवन के बाद के वर्षों में उनकी रुचि साहित्य और कविता में बढ़ गई।
हाँ, पारंपरिक दर्शन से हटकर उनकी रुचि साहित्य और कविता की ओर बढ़ती गई। शायद उन्हें लगने लगा था कि ये विचारों को व्यक्त करने के ज्यादा असरदार तरीके हैं, ज्यादा मानवीय तरीके हैं। तभी तो स्टैनफोर्ड में उनकी आखिरी अकेडमिक नियुक्ति फिलॉसफी के प्रोफेसर के तौर पर नहीं हुई।
किस तौर पर हुई?
कंपैरेटिव लिटरेचर, यानी तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर के तौर पर। ये कहानी कहने की ताकत, नैरेटिव की पावर में उनके बढ़ते विश्वास का प्रतीक था।
तो संक्षेप में कहें तो रिचर्ड रॉडी ने पश्चिमी दर्शन के लक्ष्य और तरीकों पर ही बुनियादी सवाल खड़े कर दिए।
हाँ बिल्कुल,
उन्होंने कहा कि दार्शनिक सदियों से एक भ्रामक छवि मन को प्रकृति के आईने के रूप में देखने के शिकार रहे हैं, जिसका काम दुनिया का एकदम सही अक्स उतारना है।
और इस छवि को तोड़कर
रॉडी ने हमें दर्शन को परम सत्य की खोज के बजाय एक कभी खत्म न होने वाली मानवीय बातचीत, एक ग्रेट कॉन्वर्सेशन के रूप में देखने का न्योता दिया,
जिसका मकसद है जीने के ज्यादा उपयोगी, ज्यादा उम्मीद भरे और ज्यादा दिलचस्प तरीके खोजना।
उनका महत्व इसी नजरिए के क्रांतिकारी बदलाव में है। उन्होंने बुद्धिजीवियों से कहा कि वे अमूर्त मेटाफिजिकल पहेलियों में उलझने के बजाय अपना ध्यान मानवीय स्वतंत्रता और एकजुटता बढ़ाने के प्रैक्टिकल काम पर लगाएं।
जहां उनके आलोचक उन पर सत्य और तर्क को तिलांजलि देने का आरोप लगाते हैं,
वहीं रॉडी की विरासत एक ऐसे विचारक की है जिसने दर्शन को वापस दुनिया से, हमारी जिंदगी से जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश की।
वे उदार लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो किसी ईश्वरीय या तार्किक गारंटी पर नहीं टिकी है,
बल्कि किस पर टिकी है?
साझा उम्मीदों और इंसानी संवाद की नाजुक मगर शक्तिशाली जमीन पर।
रॉडी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हम सत्य और नैतिकता की उन ठोस नींवों को छोड़ दें जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है, तो फिर हम किस आधार पर आपसी समझ और सामाजिक प्रगति का महल खड़ा कर सकते हैं?
क्या सिर्फ साझा उम्मीदें और लगातार चलने वाला संवाद काफी है, खासकर आज की इस गहरी बंटी हुई दुनिया में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।